जीवन एक गोरख धंधा है। ऑडिबल की विशेष प्रस्तुति ओम स्वामी के विचार, ओम स्वामी की आवाज में। दिल पे हैरत ने अजब रंग जमा रखा है, एक उलझी हुई तस्वीर बना रखा है। कुछ समझ में नहीं आता कि ये चक्कर क्या है, खेल क्या तुमने अजल से रचा रखा है। रूह को जिस्म के पिंजरे का बनाकर कैदी, उस पर फिर मौत का पहरा भी बिठा रखा है। हैरत की एक दुनिया हो, तुम एक गोरख धंधा हो।
गोरक्षनाथ परम सिद्ध हुए, जिनका कि संस्कृत नाम गोरक्ष नाथ और हिंदी का नाम गोरखनाथ था, उन्हीं से ये शब्द निकला गोरख धंधा। क्योंकि जिस समय में वो जीवित थे, ऐसी ऐसी चीजें करके दिखाते थे कि सामने वाला समझता ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है। वो सोचते थे कि ये जो गोरखनाथ कर रहा है वो गोरखनाथ ही जानता है। तो पूछते थे कि ये क्या किया उन्होंने, ये कैसे उत्पन्न कर दी विभूति, या धुने में से ये कैसे रसायन को निकाल दिया, स्वर्ण को उत्पन्न कैसे कर दिया। तो प्रचलित हो गया कि पता नहीं भाई गोरख धंधा है, कि गोरखनाथ ही जानते हैं कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, जिससे कि गोरख धंधा हुआ। मैंने इसलिए इसका नाम गोरख धंधा सोचा क्योंकि जीवन वास्तव में ही एक गोरख धंधा है। ये वो उलझन है कि यदि आप ये सोचें कि इसको मैं सुलझा लूं, जितना सुलझाएंगे उतना ये उलझता ही चला जाता है। कहते हैं एक दुकान थी, उसमें कई प्रकार की पहेलियां और बच्चों के खिलौने मिलते थे। एक पहेली वहां पर ऐसी कही जाती थी बच्चों के लिए, जिसको कोई आज तक सुलझा ना पाया। तो एक बहुत बड़ा गणितज्ञ वहां पर जाता है कि मैंने सुना है आपकी दुकान में एक ऐसी पहेली है जिसको आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। दुकानदार ने कहा जी है, जरूर उसमें कुछ गड़बड़ होगी, हो सकता है उसमें 3-4 टुकड़े ना ही दिए हों, व्यक्ति पागल होकर जोड़ने की कोशिश कर रहा है और टुकड़े ही नहीं है उसमें पूरे, तो कैसे जोड़ेगा पूरी पहेली को। दुकानदार ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, पूरी है पहेली तो, पर आज तक तो कोई नहीं आया जो उसको सुलझा पाए। इतना कि जो बनाने वाला है उसने $1,000,000 का उस पर इनाम रखा हुआ है, जो उसको सुलझा दे उसको $1,000,000 देंगे। गणितज्ञ ने कहा मैंने इतने इतने बड़े जो गणित के सवाल हैं उनका उत्तर निकाला है, ये तो छोटी सी चीज़ है, और तुम कह रहे हो बच्चों के लिए बनी है, बच्चों के लिए बनी है जी, लाओ दिखाओ। तो साधारण सा डिब्बा, सरल सी पहेली, वो उसको लगाना शुरू करता है, सुलझाना शुरू करता है, तो कहता है 10 मिनट लगेंगे मुझे बस, पर 10 घंटे बाद भी वहीं बैठा होता है और पसीना और बुरे हाल, भूख लगी हुई, अब खिंच भी रहा है, तिल मिला रहा है, उसको अपनी बेइज्जती भी महसूस हो रही है और उसको अटपटा भी लग रहा है कि इतने बड़े बड़े बातें बोल के डंके की चोट पर कि मैं तो ये 10 मिनट में कर दूंगा, 10 घंटे बाद भी बुरा हाल है, बीवी भी घर पर पहुंचेगी, कहाँ थे इतनी देर, क्या कहेंगे, बच्चों की पहेली सुलझा रहा था, बड़ी भारी समस्या है। तो दुकानदार को बोलता, वो कहता कि क्या रहस्य इस पहेली का। दुकानदार से पूछा कि क्या रहस्य, क्यों नहीं मैं इसको सुलझा पा रहा, इतनी भारी विपत्ति यहां पड़ी, देखने में इतनी सरल, ये 20 मुश्किल से टुकड़े हैं। तो उसने कहा, ये जरा डिब्बा देखिए तो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। डिब्बे के ऊपर लिखा होता है जीवन की पहेली, कि ये जीवन की पहेली है, इसको कोई सुलझा नहीं सकता। नामे विदुहु सुरगणाः प्रभवम ना महर्षः अहम आदिर ही देवा नाम। भगवान ने कहा है कि महर्षि नाम च सर्वशः, कि मुझे कोई कुछ समझ नहीं सकता, कौन थे, संभव नहीं है। तो एक ऐसा गोरख धंधा है जो कि उल्टा शुरू हुआ पड़ा है। जीवन में यदि सुखी रहना है तो उसके लिए इसको समझने की बजाय इसको जीना आना चाहिए। जब तक हम जीवन से प्रश्न उठाते रहेंगे तब तक हम व्यथित रहेंगे, क्योंकि एक उत्तर मिलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा प्रश्न जागृत होगा, एक उत्तर मिलेगा, फिर चौथा। प्रश्न जो हैं कभी खत्म नहीं होंगे। मैं क्यों, मेरे साथ क्यों हुआ, मैं इस जगह पर क्यों हूं, या मैं वहां पर क्यों नहीं हूं, इत्यादि इत्यादि। प्रश्नों की बजाय जीवन को धारण करना आना चाहिए। तो कहा जाता है कि यह गोरख धंधा इसलिए है क्योंकि उल्टा शुरू हुआ है। मनुष्य पैदा होता है तो कोई जिम्मेवारी नहीं कंधे पर, बच्चा खिलखिलाता है, हंसता है, रोता है, जैसे मन करता है वैसे करता है, परंतु जैसे जैसे बड़ा हुआ तो उसका उत्तरदायित्व बढ़ता चला जाता है, उसके कंधे जो हैं झुकने शुरू हो जाते हैं, बोझा जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर जब उसमें बल होता है, शक्ति होती है उसमें, तो खूब पुरुषार्थ करना है, खूब मेहनत करनी है उसको, नहीं तो जीवन जी नहीं सकता। जब तक वो बंद होता है तब तक वृद्ध होने का समय आ गया, घर परिवार में इतना व्यस्त रहा कि अपना जीवन जीने का समय नहीं मिला। जब वृद्ध हो गया तो किसी के लिए उसके पास समय नहीं है, किसी के पास उसके लिए समय नहीं है। फिर एक और विपत्ति है, फिर शरीर जो है कमजोर हो रहा है, जीर्ण क्षीर्ण हो रहा है, और मनुष्य विक्षिप्त हो रहा है। अब लकड़ी लेकर चलना शुरू कर देता है, फिर समाज में रह नहीं सकता, गाड़ी नहीं चला सकता, अपने आप से भोजन नहीं कर सकता, अपने आप से चल नहीं सकता, फिर ऐसी विदीर्ण अवस्था में वो अपने शरीर को छोड़ देता है। हर कोई कहता है जो वृद्ध अवस्था की ओर पहुंचता है, 70 से ऊपर कोई भी पहुंच जाए, उसकी ये प्रार्थना जरूर होती है कि बस जी चलते फिरते चला जाऊं, किसी के उसमें ना पड़ूं, मैं किसी सेवा ना लूं, सारा जीवन सेवा लेते थका नहीं, सारा जीवन उसका यही प्रश्न था कि मुझे देखने वाला कौन है, मेरी सेवा होनी चाहिए। मरते हुए कहते हैं मैं सेवा ना लूं, कितना गोरख धंधा है, कितना दोगलापन है। सोचो, यही मैंने कहीं पढ़ा था, विपरीत हो तो कितना सुंदर होता, कि सबसे पहले मृत्यु हो जाए, उसका भय चला गया, मृत्यु से मनुष्य पैदा हो और एक वृद्धाश्रम में चला गया, पैदा होते ही मृत्यु हो चुकी है, मुक्त है, वृद्धाश्रम में आ गया, वहां पर उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है, फिर वो जो है युवा होता जा रहा है, जैसे ही वो युवा हुआ, क्योंकि युवा हो रहा है अब, उतना वृद्ध नहीं है, वृद्धाश्रम वाले कहेंगे यहां नहीं रह सकते, बाहर जाइए यहां से, बाहर जाते ही उसका पहला दिन रिटायरमेंट का, पहले दिन उसको स्वर्णिम में घड़ी मिलेगी और इतना सारा पेंशन का फंड मिलेगा, ग्रेचुटी मिलेगी, अच्छे ढंग से वो पैसे लेकर शुरू करेगा अपना जीवन। अब वो नौकरी कर रहा है, दिन प्रतिदिन उसमें ऊर्जा जो है बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि वो युवा हो रहा है। युवा होते 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 फिर एक दिन इतना युवा हो जाता है कि वो कॉलेज में पहुंच जाता है, सारी उम्र कमाई की, कमाई से ही शुरू किया, बुढ़ापा जा चुका है, मृत्यु जा चुकी है, उत्तरदायित्व तो जा चुके हैं, बच्चों के विवाह हो चुके हैं, रोना धोना सब परिवार में हो चुका है, क्लेश हो चुका है, अब वो अपना जीवन जी रहा है। अपना जीवन जीते हुए वो कॉलेज में पहुंच जाता है और अब पूरा सुख लेगा। जब मन किएगा दारू भी पिएगा, मन करेगा स्मोक भी करेगा, मन करेगा जो उसका करेगा करेगा, क्योंकि उस उम्र में आप माँ बाप की बात तो सुनते नहीं। बाद में अपने जो पति या पत्नी उसकी बात नहीं सुनते, उसके बाद अपनी नहीं सुनते, उसके बाद सुनाई नहीं देती, सुनना भी चाहे मनुष्य तो सुनाई नहीं देता, तो बड़ी समस्या है। फिर वो स्कूल में चला गया, और भी सुख है, माँ बाप घर पर हैं, ध्यान रख रहे हैं, माँ गरम गरम भोजन पैक करके दे रही है, खिला रही है, और खेल कूद रहा है दिन सारा दिन, 10-10 घंटे सो रहा है, मज़े से उठ रहा है, और जो है बालक हो जाता है। कोई उत्तरदायित्व नहीं अब जीवन पे, कोई चिंता नहीं, भाई बंधु अपने भाई बहन सब आसपास हैं, सब केवल खेल कूद हो रहा है। और छोटा हो जाता है, 9 महीने गर्भ में तैरता है, और छोटा हो जाता है, संसर्ग का एक सुख मात्र बनकर जीवन उसका खत्म हो जाता है। कितनी सुंदर है, उल्टा हो गया चक्र। तो कहीं मैंने पढ़ा था बड़ा सुंदर, दिल पे हैरत ने अजब रंग जमा रखा है, एक उलझी हुई तस्वीर बना रखा है, कुछ समझ में नहीं आता कि ये चक्कर क्या है, खेल क्या तुमने अजल से ये रचा रखा है, रूह को जिस्म के पिंजरे का बनाकर कैदी, उस पे फिर मौत का पहरा भी बिठा रखा है, हैरत की एक दुनिया हो तुम एक गोरख धंधा हो। कि कहां तो सृष्टि ने हमको शरीर दे दिया, और कहां हमको बताया गया है हम सिर्फ शुद्ध आत्मा हैं। शुद्ध आत्मा है तो शरीर रूपी पिंजरा क्यों दे दिया, दे भी दिया उस पर मौत का जो है एक पहरेदार नियुक्त कर दिया गया है। अधिकतर मनुष्य सारा जीवन डर में बिता देते हैं, सारा जीवन, कुछ खोने का डर, किसी को खोने का डर, मेरी युवावस्था ना चला जाए, मेरा यौवन ना चला जाए, मेरा धन ना चला जाए, मेरा सम्मान ना चला जाए, मेरी प्रतिष्ठा ना चली जाए, मेरे बाल ना चले जाए, मैं ना चला जाऊं। सारी उम्र जो है एक भय में ही बिता दी। क्यों? क्योंकि इस मूल को नहीं समझे कि जीवन को समझने की आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं है कि जब तक विद्वान ना बनेंगे तब तक जीवन का रस ना ले सकेंगे। जब तक पहले जीवन के रस को चखा ना जाए तब तक मनुष्य जीना नहीं सीख सकता। कहते हैं एक कक्षा लगी हुई थी, उसमें एक जो शिक्षक है पढ़ा रहा था, और वो नास्तिक था। उसने सब बच्चों से कहा, तुम लोग पढ़े लिखे हो, अंधविश्वास में और इस मूर्ता में नहीं पढ़ना चाहिए, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, विज्ञान ही सब कुछ होता है। एक लड़का था वहां पर जिसने कहा कि मैं ये सेब खा सकता हूं। उसने कहा सेब खा लो। वो सेब खाना शुरू कर देता है। थोड़ा सेब खाने के बाद शिक्षक से पूछता है, क्या आप बता सकते हैं कि ये सेब खट्टा था या मीठा? शिक्षक ने कहा, यह मैं कैसे बताऊं, सेब तुम्हारे हाथ में है, तुम खा रहे हो, मैं कैसे बता सकता हूं जो तुम सेब खा रहे हो वो मीठा था या नहीं? तो उसने कहा, मास्टर जी बड़ी सरल सी बात है ये, तो फिर जिस चीज का आपने स्वाद चखा ही नहीं उसके ऊपर आप टिप्पणी कैसे कर सकते हो? जिस ईश्वर का, जिस सत्ता का, जिस शक्ति का, जिस दिव्यता का आपने स्वाद चखा ही नहीं उस पर आप कैसे कह सकते हो कि वो स्वाद ही नहीं? और स्वाद एक ऐसी चीज है, कि सबसे पहले आपने कैसा स्वाद चखा है वो जीवन पर्यंत मन पर कहीं अंकित हो जाता है। पहली बार जब खाया हो अगर करेला भी अच्छा लगा हो तो आप चॉकलेट से ज्यादा करेले को पसंद करोगे। पहली बार अगर जब खाया है गलत हो तो सारी उम्र उससे भागोगे, क्योंकि माँ जबरदस्ती करती है दूध भी दूध भी दूध भी। बच्चा कहता है सब कुछ पी लूंगा बस दूध ही नहीं पीऊंगा। खा खा हरी सब्जियां खा हरी सब्जियां खा, वो ऐसी चीज है बिल्ली कुत्ते भी नहीं खाते, फेंक दो। बच्चा कहता है मैं क्यों खाऊं। तो यदि जोर जबरदस्ती करेंगे तो जीवन जो है बगावत कर देता है। सबसे पहले जिस चीज का स्वाद चख रहे हो वो कैसी है, इसीलिए अध्यात्म के मार्ग पर गुरु की इतनी महत्वता बताई गई है कि जो सबसे पहला स्वाद है यदि गुरु के हाथों से चखा तो स्वादिष्ट लगेगा, फिर मनुष्य को होगा ये स्वाद जो है संभव है, मुझे इस स्वाद के ऊपर चलना है, यदि इस स्वाद के ऊपर चला तो मेरा जीवन स्वादिष्ट हो जाएगा। और सभी एक स्वाद के पीछे ही तो भाग रहे हैं। तो बुद्ध ने कहा कि कभी भी समझने का प्रयत्न ना करो। यदि कोई मनुष्य आपके पास क्षतिग्रस्त आता है, जिसको चोट लगी हुई है, विषैले बाण लगे हुए हैं, उसके बाणों को निकालोगे या उससे पूछोगे किसने मारे पहले बताओ उसको पकड़ते हैं? हो सकता है आप पंजाबी हो पहले वही करो, पर अधिकतर आप ये नहीं करोगे। आप कहोगे कि नहीं इसको बचाया जाए। तो भगवान बुद्ध ने एक 12 कड़ियों की, जिसको कि उन्होंने द्वादश निदान बताया, कहा जाए तो उस पर विवेचन किया। उन द्वादश निदानों को बताया गया है कि क्यों मनुष्य का जीवन एक गोरख धंधा बनकर रह जाता है। उसके पीछे 12 कारण हैं, एक के साथ एक जुड़े हुए हैं। सर्वप्रथम उन्होंने कहा मूल कारण मनुष्य के होने का, मनुष्य के दुख का, मनुष्य के जीवन का, उसके पुनर्जन्म का, उसके कर्म बंधन का, उसकी ऋण अनुबंधना का अर्थात प्रारब्ध का, एक ही मूल कारण है। और बड़ी गहरी बात बोली बुद्ध ने, क्योंकि जीवन में वो सबौर से परिपूर्ण थे इसलिए उनकी सब बातों में एक अद्भुत गहराई थी, क्योंकि वो उस कोने से बोल रहे थे जहां से वो स्वाद चख चुके थे। तो पहला 12 निदानों में, निदान अर्थात कारण, सबसे पहला जो कारण उन्होंने बताया जिसके कारण कि मनुष्य दुखी है वो है अविद्या। अविद्या अर्थात अज्ञानता, क्योंकि यदि ज्ञान होगा वास्तविक, मन को समझाने वाला नहीं, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति को इसीलिए उन्होंने आत्म साक्षात्कार बता दिया। यदि मनुष्य को ज्ञान हो वो दुखी नहीं हो सकता, इसलिए तमस को अज्ञानता बताया गया। जब जब तमोगुण प्रबल होता है, अज्ञानता प्रबल होती है, मनुष्य जो है दुखी हो जाता है। पर ज्ञानी जो है उसको दुख नहीं है। तो बुद्ध ने कहा जब अज्ञानता प्रबल होती है उससे संस्कार उत्पन्न होता है। संस्कार अर्थात चित्त की वृत्तियां। अज्ञानता यदि है तो चित्त की वृत्तियां उससे जागृत होती हैं। एक तो संस्कार है जो हम साधारणतः जिस शब्द का प्रयोग करते हैं कि बहुत संस्कारी है, माता पिता ने बहुत संस्कार दिया है, वो नहीं। संस्कार अर्थात जो संसार के साथ जिस आकार को लेकर वो चल रहा है अपने चित्त में, एक जीवन से दूसरे जीवन, फिर तीसरा जीवन, फिर चौथा जीवन, पांचवा जीवन, अविद्या से भगवान बुद्ध ने कहा संस्कार की उत्पत्ति होती है, संस्कार से मनुष्य के चित्त की वृत्तियां जो हैं प्रबल होती हैं, अविद्या से संस्कार और संस्कार से विज्ञान, विज्ञान अर्थात चेतना। मनुष्य चिंतन करना सीखता है, संस्कार के आधार पर वो चिंतन करता है। आपका यदि संस्कार है कि अहिंसा में जीना है तो हिंसा पूर्वक हर कृत्य को आप गलत मानोगे। उसमें उस विशिष्ट ज्ञान को जो कि अज्ञानता से उत्पन्न हुआ है, मैले कपड़े से तो सफाई नहीं ना की जा सकती। कपड़ा यदि मैला हो एक दो बार झाड़ दोगे उसके बाद कपड़े का ही गंध उस पर लगना शुरू हो जाएगा। गंदे कपड़े से साफ बर्तन और गंदा हो जाता है और दुर्गंध युक्त हो जाता है। तो भगवान ने कहा कि अविद्या मनुष्य के दुख का मूल कारण है, अविद्या से संस्कार उत्पन्न होता है, संस्कार से चेतना, चेतना से मनुष्य चिंतन करता है, और उसके बाद जब ये तीन कड़ियां जुड़ जाती हैं, चौथा उन्होंने बताया है नाम रूप। नाम रूप अर्थात एक बोध होना शुरू हो जाता है सब चीज के वास्तविक होने का, जबकि सब चीज थोड़े समय के लिए होती है। नाम रूप अर्थात ये आकार है, ये मेरा घर है, ये मेरी कार है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा धन है, ये मेरे आभूषण हैं, ये मेरे वस्त्र हैं, ये सब पैदा अविद्या से ही हो रहा है। क्योंकि यदि आपका है तो रख के दिखा दो अपने पास, हाथ में है ही नहीं, चोर चोरी कर सकता है, या एक भूचाल आए सब चला जाता है, या एक कुछ ऐसी बीमारी लगे, मानसिक रोग लग जाए, कुछ सोच नहीं सकता व्यक्ति, कुछ भी हो सकता है। जिस जिस चीज को हम अपना मानते हैं, अगर आप दावे के साथ कह सकते हैं कि वो मेरी है, तो उसको अपने पास सदा के लिए रख के दिखा दो, संभव नहीं। अविद्या से बुद्ध ने कहा संस्कार उत्पन्न होता है, संस्कार से मनुष्य में चेतना अर्थात विज्ञान उत्पन्न होता है, विज्ञान से नाम रूप का बोध होता है कि ये सब चीजों का एक वो है, आकार है जिसको मैं पकड़ सकूं, छू सकूं, वो वास्तविक चीज है, शायद वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र अर्थात जो किसी पर अवलंबित नहीं है, आधारित नहीं है, अपने आप से रह सकती है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। जब नाम रूप का बोध होता है तो बुद्ध ने कहा फिर षडायतन जागृत होते हैं, षडायतन अर्थात षड आयतन, जो हमारी पांच कर्म इंद्रियां हैं, फिर पांच तन्मात्राएं हैं शब्द स्पर्श रस रूप गंध, उसी को मिलाकर छठा बुद्ध ने बोल दिया मन को भी यहीं रखना होगा, यदि मन नहीं तो ये भी नहीं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चा विषयानुपसेवते, यदि मन नहीं है तो पांचों इंद्रियां ना सुन सकते हैं, ना किसी चीज का रस ले सकते हैं। कितनी बार आपने अनुभव किया होगा यदि दुखी हो, या मान लीजिए कुछ देख रहे हैं टीवी में और उसमें इतना व्यस्त हैं, भोजन कर लिया और पता ही नहीं क्या खाया है, क्या रस था उसका, क्या सुना, किसी ने बुलाया, कुछ पूछा, कुछ नहीं पता चलता। जैसे बालक वीडियो गेम या किसी चीज में, या आजकल बड़े लोग भी उसमें व्यस्त होते हैं, आसपास कुछ हो रहा हो कुछ नहीं पता चलता। तो षडायतन बताया गया है, ये वो है जिसका चारों ओर से अब जाल है, ये एक ऐसा कमरा है, ऐसा कक्ष है जिसमें कि छह झरोके हैं, छह खिड़कियां हैं। अगर भीतर शांति से बैठना है तो छहों की छह बंद होनी चाहिए, उसी को पतंजलि ने प्रत्याहार बता दिया। तो सबने ये भिन्न भिन्न प्रकार के मार्ग बता दिए इस गोरख धंधे से निकलने के लिए, परंतु निकल कोई ना पाया, क्योंकि समझकर नहीं निकल सकते। अविद्या से संस्कार, संस्कार से मनुष्य में विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से षडायतन और उससे स्पर्श। स्पर्श का फिर मनुष्य बोध करता है कितना आनंदित होता है या दुखदायी होता है स्पर्श। जिस चीज को मैं स्पर्श कर सकूं उससे हमेशा मेरा मोह ज्यादा होगा, हमेशा। जिस जो मेरी मेरे हृदय को स्पर्श कर जाएगा उसके साथ मेरा मोह ज्यादा हो जाएगा, जो शरीर को स्पर्श कर जाएगा उसके साथ मेरा मोह ज्यादा हो जाएगा। भगवान ने कहा यदि अज्ञानी हो, अविद्या में पैदा हुए हो, अविद्या में जीवन को जी रहे हो तो संस्कार से हट नहीं सकते। कर्म का बंधन ही संस्कार बताया है उन्होंने। फिर उससे विज्ञान है, उससे नाम रूप का बोध है, उससे मनुष्य इंद्रियों के जाल में फंसता है षडायतन, उससे स्पर्श का बोध होता है और उसके बाद वेदना। कि यदि स्पर्श है तो अनुभूति भी अवश्य होगी, यदि स्पर्श है तो अनुभूति भी अवश्य होगी, यदि अनुभूति है तो सुखी या सुखदायी होगी या दुखदायी होगी। अनुभूति किसी भी चीज की या सुखदायी होगी या दुखदायी होगी। तो वेदना में मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर देता है। जब वो उस अनुभूति के पीछे लग जाता है कि मेरा सब कुछ स्थायी रहे, मेरे सुख स्थायी रहे, मेरे कमरे में हमेशा ठंडी हवा आती रहे, वातानुकूलित रहे, मेरे बैंक के खाते में हमेशा धन रहे, मेरे यौवन चीरकाल तक रहे, मेरे दांत कभी ना गिरे, इत्यादि इत्यादि, फिर उससे एक बड़ी ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। भगवान ने कहा है अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, उसके बाद तृष्णा। एक बार जिसने स्वाद चख लिया, जिसने जिसको इस बात का बोध हो गया कि ये मैं स्वाद ले सकता हूं, उसके मन में तृष्णा अवश्य उत्पन्न होगी। इसलिए शायद कृष्ण से ज्यादा सुंदर कोई नाम ना होगा, जो समस्त तृष्णाओं को अपने भीतर समेट सके वो व्यक्ति कृष्ण हो जाता है। वो या उनके योग से या उनकी भक्ति से। उसी को भगवान ने अहम आत्मा गुडाकेश, उसी को कहा है कि मैं ही वो चेतना हूं। भूतनाम अस्मि चेतना, इंद्रनाम मनश्चस्मि। नहीं तो तृष्णा मनुष्य को घुमा के रख देती है, अंधा कर देती है, सुख से नहीं जीने दे सकती। चातक रटत तृषाति ओहि। चातक जो पक्षी होता है उसकी तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। रोज उसको चंद्रमा दिख रहा है परंतु रोज वो वैसे ही चक 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 कर रहा है रात को। वो उसका रटना जो है लगा हुआ है। बात यहां तक भी खत्म हो जाती तो ठीक था, परंतु बात यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अविद्या से संस्कार उत्पन्न हुआ, संस्कार से विज्ञान हुआ, विज्ञान से नाम रूप का बोध आया, नाम रूप के बोध से षडायतन इंद्रियों में मनुष्य फंसा, इंद्रियों में जब मनुष्य फंसा तो उसने एक स्पर्श की अनुभूति की, स्पर्श की अनुभूति की तो उसको दुख या सुख एक वेदना की अनुभूति हुई, जब वेदना हुई तो तृष्णा हुई, तृष्णा हुई तो क्या हुआ, भव। उसके बाद अवस्था बताई है भगवान ने, जिसको हम भवसागर बोलते हैं कि सब हैं। मनुष्य को इतनी भारी अज्ञानता हो जाती है कि वो अपने होने को सत्य मानना शुरू कर देता है, अपने आप को बड़भागी मानता है, उसको अपना हर काम बड़ा लगता है, अपना अस्तित्व बड़ा लगता है। उसके कारण उसका जन्म होता है, भगवान ने कहा है भव अर्थात होना। वो बन जाता है, जो भी वो जीवन में बनता है, अच्छा बुरा जैसा भी, उत्कृष्ट या निकृष्ट, वो इस भाव से बनता है। बात यहां भी रह जाती तो भी कुछ ना कहीं आशा थी, परंतु यहां खत्म नहीं होती। अभी गाड़ी चल रही है, क्योंकि वुहान ने बोला है कि जब स्पर्श से वेदना की अनुभूति होती है जिससे मनुष्य में तृष्णा उत्पन्न होती है, उस तृष्णा से मनुष्य भव सागर में डूब जाता है, भव हो जा मतलब होना शुरू कर देता है। उसके बाद जाति, जाति अर्थात पुनर्जन्म, जो है जिसके हृदय में, जिसके मन में, जिसकी चेतना में तृष्णा है, उसका पुनर्जन्म निश्चित है। ये 11वीं कड़ी है उस श्रृंखला की। जो पुनर्जन्म है जिसका, वो भी हो जाता कोई बात नहीं, सिर्फ इतना ही होता कि पुनर्जन्म हो रहा है कोई बात नहीं, पर वहां भी खत्म नहीं होती बात। जिसका पुनर्जन्म है, बुद्ध ने कहा है, उसको एक अवस्था से और गुजरना होगा, एक निदान अवस्था ना कहा जाए उसको, एक कारण उसके साथ और जुड़ा रहेगा हमेशा, एक कड़ी अभी और बाकी है, वो है जरा और मृत्यु। उसको एक दिन अपने ही गिरते हुए शरीर, गिरती हुई मन की अवस्था का सामना करना पड़ेगा, और एक दिन उसको अपनी मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। तो इस गोरख धंधे से निकला कैसे जाए? बुद्ध ने कहा इसका बिल्कुल विपरीत क्रम कर दो। यह सृष्टि क्रम है, संहार क्रम में यदि चलेंगे हम, उल्टे चल पड़े कि जरा और मृत्यु निश्चित है, वो उससे मैं हट नहीं सकता, इसलिए मैं उसके पीछे आ जाता हूं कि मेरा जन्म हुआ है, इसका मुझे क्या करना है। मैं हूं, मुझे शक्ति दी है मेरे शरीर ने, प्रकृति ने या ईश्वर ने, इसका मुझे क्या प्रयोग करना है। कि जरा मृत्यु का स्मरण, जाति अर्थात पुनर्जन्म हुआ है मेरा, और ये मेरा जीवन है, भव मैं हूं, इसका मुझे क्या करना है, किस प्रकार की अनुभूति के पीछे मुझे जाना है, किस प्रकार की वेदना के पीछे मुझे जाना है, ठीक उससे किस चीज का स्पर्श करना है, क्या चीज मेरे लिए त्याज्य है और क्या चीज मेरे लिए ग्राह्य है, फिर उससे जब मैं आगे चलूंगा स्पर्श से, तो अपने आप बोध होगा ये नाम रूप, ये षडायतन इंद्रियां हैं, क्षणिक हैं, ये जो षडायतन में मैं फंसा हुआ हूं, फिर उससे मैं नाम रूप पे जाऊंगा, नाम रूप पर जब मैं चिंतन करना शुरू करूंगा तो विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान की उत्पत्ति होगी उस समय, फिर मनुष्य दूसरी अवस्था में संस्कार तक पहुंचेगा, अपने मूल तक। वहां पहुंच गया तो अविद्या का नाश है। असंशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, एक दृढ़ता के साथ इसको काटना होगा, अनासक्ति के साथ, फिर कोई वापसी नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि इससे निकला कैसे जाए? चाहे हमको ये 12 कड़ियां पता हैं, फिर भी कैसे इससे मनुष्य बाहर आएगा? उसके लिए जो है अगला एपिसोड है।